ఇతర సకల కర్మ వాస్తేశ్వరులు మూల్యాకరం हरिनाथ बोला करेगा तो सारे भाई दूसरों का शिकार भी नहीं होना।
No.
स्वामी तय काहे बिसराया जब ही शरण गही कृपा निध गज ग्राह ते छूटा महिमा नाम कहां लो वर्णो राम कहत बंधन तें टूटा अजामल पापी जग जाने निमुख माय निस्तारा नानक कहत चेत चिंतामन तें भी मना बिरतियां बारों रोज के रसना द्वारा शब्द विच बोलना कन्ना द्वारा सुनना नेत्रां गुरु स्वरूप के ध्यान विच महल करना बुद्ध नाल विचार करी जाना इन मन को एकाग्र करके हरी जस का पूरा पूरा लाभ उठा सकती है। विचार वाहेगुरु कहिंदा ऐ जीव तू मेरी शरण मैं तेनू सारे दुखां पापां तो मुक्त कर दिया। तो प्रभु की शरण में आके कोई मुक्त होया होवे उसके जवाब गुरु तेग बहादुर महाराज चार उदाहरण देंगे चार मिसाल देंगे शब्द दे पहली मिसाल गणका दी दूसरी तो तीसरा गज चौथा जाना इहो जे प्रभु की शरण में आके दुखां पापां तो मुक्त होके बरी होके सदा वास्ते आनंद दे सागर जी दे दुखता नाम निशान ने उहदे विच लै पहले गणका का प्रश्न गणका पात्र भर के पापां का गलहार करो
पापां का हार करो Thank you.
ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸੰਭਲਣ ਤੋਂ ਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਬੁਰਾਈ ਵੱਲ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਬੀਜ ਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਿਆਲ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉੱਠਦੇ ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਾਨੁਖ ਸਰੀਰ ਲੱਖ 84 ਜੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਘੱਟ 84 ਲੱਖ ਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਮਾਮ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਹੋਰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕਲਪਾਂ ਤੱਕ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲਾਤ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੇਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹਾਲਤ ਲੰਗੜੇ ਗਲੇ ਵਰਗੀ ਜੋ ਜਿਲਣ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਚੰਗਾ ਮਾਰਦਾ ਬਜਾਏ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤਸੀ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਖਰਕੇ ਨਾ ਕੱਢੇ ਜਿਲਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਇਉਂ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਪਰ ਕੁੱਤੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅੰਕੁਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਬੀਜ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਉੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉੱਗਦਾ ਕਰ ਹੈ ਜਦ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜੇ, ਯਾਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜੇ, ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਔਰ ਰੁੱਤ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਜੰਮਣ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਸਾਧ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਗਦੇ ਚਲੇ ਜਾ। ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜ ਉਗਦਾ ਹੈ ਜਦ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਦਨਾ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ, ਮਾਸ ਵੇਚਣਾ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢਣੇ ਜੀ ਦਾ ਕਰਤੱਵ, ਪਰ ਮਨੋਂ ਘਿਰਨਾ ਸੀ, ਮਨੋਂ ਇਸਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਮਾਸ ਆਦਿ ਵੇਚਦਾ ਅਤੇ ਬੱਕਰੇ ਵਗੈਰਾ ਵੱਢਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਤਾਈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਜਸ ਦੀ ਧੁਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਵਜਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨੱਚ ਉੱਠਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰੂਪੀ, ਯਾਨੀ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਦਾ ਬੀਜ ਪਿਆ ਉੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਗਿਆ ਵੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਮੁਰਾਦਮੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਦਨੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਬੱਕਰੇ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ, ਕਈ ਜਨਮ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੱਢਦਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗਲ ਵੱਢਦਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਭਾਜੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕਰੇਂਗਾ ਵੈਸਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੈਰਾਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨਾ ਜੇਕਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਭੋਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਾ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਸਾਸਨ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਨੀਚੇ ਕਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੜ ਦੀਆਂ ਟੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਕਦੇ ਭਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਖਾਲੀ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। इसी तरह कदे नर्क कदे सुख कदे दुख कदे सुख अनेक तकलीफा उठा रहे, किसी अविनाशी सुख नु प्राप्त नहीं हुआ। तो इस करके एक कर्मां दा चक्कर ही है। तो जदों पूर्वले पुण्य कर्म जागते हैं, पिछले पाप कर्मां दे फल नु नाश करके अविनाशी सुख वल ले जाते हैं। तो सदने के चित्त विच जो ख्याल पैदा हो, जबरदस्त ख्याल पैदा हो, कोई वक्त आए मैं अपने कर्मां दा चक्कर कट के सदा वास्ते है ये सुख लीन हो जाए, जिस सुख भी रुख का नामो निशान ना हो। सत्संग कर्म कर्मां नूं कटण वास्ते उसने थां थां सत्संग विच करना, साधन फकीरां दी संगत करना, जिथे कि सुनना पहुंचण दा उपराला करना। तो यह सवाल हर एक महापुरश के पास करना, सारे कर्म किवें कटे जाण ताकि अगे वास्ते जिहड़े कीते उन्हां दा फल ना भुगतना पवे, नहीं तो पता नहीं कितने जन्म गल बढ़ाना पैना। यह चित विच पै पैदा होया, पै तो बिना भगती नहीं होंगी, भगति बिना वाहिगुरु दे विच लीनता नहीं होंगी, कर्म ही सारे कटे जाते। तो पता लगता है जीव के तीन किस्म के कर्म हैं, संचित क्रियमान और प्रारत। संचित कर्म वह हैं जो कई जन्मों का वाहिगुरु की भगति वाहिगुरु नूं मिलण वास्ते करदा चला आया, वह इकट्ठे हुए हुए हैं संचित। प्रारंभिक कर्म वह हैं जीवन का फल यह शरीर है। हाँ सदना हम भगती करते करते सत्संग चंगी अवस्था का भगत बन गया, उन चंगी अवस्था प्राप्त हो गई। एक दफा का जिक्र एक थान इलाहाबाद उत्थे रहिंदा है, चंगा सत्कार पूजा भी है और चंगे गुण भी हैं, होरनां भी उस तो फायदा पहुँचता है। जिसने अपना भला कर लिया होवे होरनां दा भी भला उस तो होया करता है। जिसने आप शराब छड़ दिती जावे होवे दूजियां दी भी छुड़ा सकता है, जिसने आप चोरी छड़ी होवे दूजियां तो भी छुड़ा सकता है। जिहड़ा आप ही नहीं छड़दा दूजियां तो किवें छुड़ाएगा। इसी तरह जिसके अंतर वसे निरंकार इसकी सीख करे संसार, जिसका असर दूसरे ते वशी पिया करदा इंसान दी करनी दा असर हुंदा है। तो उस थान उत्थों दा जो हाकम सी उत्थे इक किला बनाउण लगा। किला बनाने वास्ते कंध बनती है, कुछ चिनाई होकर गिर जाती है, फिर चिणदी फिर गिर जाती है, इहोजिहा सिलसिला कुछ देर तक रहा। तो फिर उसने ज्योतिषियों नूं पुछिया भी की सबब यह किला सिरे किवें चढ़े दुनिया में, वैर विरोध उन्हां पुरशां नाल भी दुनिया करती चली गई जिहड़े किसी नाल नहीं करते, जिहड़े पुरश राग द्वेष तों रहित हुंदे हन, किसी नाल विरोध नहीं करते, दुनिया उन्हां नाल भी बहुत सारी करन लग पैंदी है। यह क्यों? यह मन की बीमारी है, मन की टीवी है, मन का हसद है, किसी के गुण देख के किसी के शुरज देख के किसी दी वडेइयां देख के जर ना सकना, उहदे नाल ईरखा हसद छड़ेमा करन लग पैना, इसनों मन की टीवी दस्या। सत्संग जिसम के रोगों नाल मन के रोग ज्यादा दुखदायक ते खतरनाक हुंदे हन। गुरु बाबा सतगुरु नानक देव महाराज जी की उम्र 14-15 साल की है, साढ़े देश में 6 रुत्तां मनियां, दो दो महीने की एक रुत्त होंदी है, सौन भादरों की रुत्त नूं बरसात की रुत्त कहिंदे हैं। यह भी लंघ गई, अगे समान सर्दी की रुत्त शुरू हुई, गर्मी घट रही है, आहिस्ता आहिस्ता सर्दी बढ़ रही है, आसमान दे विच बदल कोई नहीं, ये है कोई सफेद रंग का जिदे पानी वह नहीं, मैं बुढ़ापे भी जिसम बल नहीं रहा कर, यहोजा मौसम आ रहा है। तो गुरु बाबा जी ने कौतक रचे, आप जी अंदर अपनी सेजा से अपने मंजे से मूँह ढक के चादर विच पै रहे हैं, अपनी बिरती संकोच के वाहिगुरु के लीन करके, जिन्हें सत्तवीं भूमिका वाला अपनी बिरती आत्मा के लीन करके आत्म स्वरूप ही बना दिता है। यहो जी समाध अवस्था में पे रहते हैं, खाते नहीं पीते बोलते चलते नहीं, अपने अनुभव से कोई देखते हैं, साधु महात्मा बार चुप चुपाते जाते हैं, कोई परमार्थक वचन करने की मौज अवे करके फिर उस तरह आ लेटते हैं। यही जी अवस्था भी दिन रात गुजर रहा है, पर माता पिता नो फिक्र पै गया। परमेश्वर ने पिछली उम्र विच पुत्र दिता, उन्हों पता नहीं की बीमारी लग गई, खाता नहीं पीता नहीं, भुख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, जेड़ा बिडू वर्गा पीड़ा हो गया, कमजोर हो गया, अन्नमय कोश है शरीर जेड़ा है, अन्न दे आसरे इसकी प्रवृत्ति हुई है, अन्न पानी बीमारी करके या वैसे ही घटा दे, कमजोर हो जाता है। इन पिता मेहता कालू जी माता तृप्ता विचार करते हैं, कोई वैद लियाइए, कोई हकीम लियाइए, उन्हें दिखाइए साढ़े पुत्र की नज़र देख के बीमारी करके उन्हें दवाई दे, राजी हो, तंदुरुस्त हो। वालदैन में तब सुख होंगे, बच्चे अच्छी तरह हसन खेडन खुश रहन, बीमार होने वालदैन में सुख कर है। इतिहास विचार करके पिंड का मशहूर वैद हरदास जिसका नाम से उन्होंने कहा जाके मेहता कालू जी ने, मेरे पुत्र नानक को पता नहीं की बीमारी है, खाता नहीं पीता नहीं, शरीर क्रिश दुबला हो गया, चेहरा डड्डू वर्गा पीला हो गया है, तो बीमारी देख के दवाई दो ताकि वह तंदुरुस्त हो, राजी हो, खावे पीवे हसे खेडे। तो वैद कह लगा फिक्र ना करो, मैं सवेर सार ही आवागा, निर्णय नर्स देखांगा, नर्स देख के बीमारी परखांगा, बीमारी परके दवाई देंगा, ठीक हो जाएगा, तुम उदास ना हो। इन अज दिन चढ़ सारी वैद हरदास कालू जी के घर आ जाता, गुरु नानक जी अपना मूह और सारे अंग चादर भी लकोई पे सन, जिमें कछू अपने अंगा संतोची में बैठा होंगे खोपरी आया, पास मूहरा डाल दिता मंजे दे, वैद अरदास बैठ गया, चादर विचों हथ कट के नर्स के उपर तीन उंगलों रख दतिया, कहे वास्ते बीमारी परखण वास्ते, वाई पितक इस चीज की प्रधानता है। सही में जो नर्स देख लग्या उस मौके गुरु जी ने उस प्रथा एक शब्द उच्चारण किया, सही कहा
तेनू रोग का पता नहीं कोई,
thank you।
ਭਗਤ ਨਵਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਲੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫਰਕ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਕਿਸ ਦੁਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਚਿਹਰਾ ਡੱਡੂ ਵਰਗਾ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਪਰਖਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਪਰਖ ਕੇ ਉਸਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਤਪਰੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਖਾਓਗੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੈਦ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਰਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹਟਾ ਲਈ? ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਦ, ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦ ਕੀ ਫਿਰ ਢੋਲੇ ਬਾਂ ਉੱਲਾ ਵੈਦ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਰਕ ਕਰੇ ਜੇਮਾ। ਵੈਦਾ ਵੈਦ ਸੋ ਵੈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ, ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਲੋੜ ਲੋ ਜਿਤਵੰਜਾ ਰੋਗਾਂ ਕਹਾਣ। ਜਿਤ ਦਾਰੂ ਰੋਗ ਉੱਠ ਜਾਏ ਤਨ ਸੁਕ ਵਸੇ ਆਏ ਰੋਗ ਗਵਾਏ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਵੈਦ ਸਦਾ। ਤੈਂ ਆਪਣਾ ਰੋਗ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਸਾਸਨ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਰੋਗ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹਨ। ਅਗਰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਹਟ ਜਾਣ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਰੋਗ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਨ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੱਖ 84 ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦ ਜੀ ਤੂੰ ਕੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਨਾਮ ਦਾਰੂ ਮੈਨ ਲਾਗੇ ਸੱਚ ਬਿਨਾ, ਜੋ ਜੋ ਦਿਸ਼ੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਗੀ ਹਨ, ਰੋਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਸਚਿਤਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਰੋਗ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸੰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਦੇਹ ਤਾਰੀ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਹਵਾ ਆਕਾਸ਼, ਇਹ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਵਰਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕੈਸੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਰੋਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਹਨ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ। ਵੈਦ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਕਾਲੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ ਪਹਿਲੇ ਕੌਤਕ ਸੁਣੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੈਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੌਤਕ ਪਾਇਆ। ਚਿਤ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵਾਈ, ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਗ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਮੁੱਢ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਲ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਟ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਸਾਸੰਗ ਜਿਸਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋੜ ਹੋਵੇ, ਕਿਤਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਆਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਠਰਮਾਂ ਨਰਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ। ਪਤਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਪਾਅ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਾਸੰਗ ਹੋਮੇ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਟ ਦਾ ਰੋਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੌੜੇ ਫਲ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜਮ ਦਸ ਮਰਦਾ ਹੈ ਹੁਮੇ ਦਾ Thank you.
सबसे पहला रोग हमें दीर्घ रोग है, दारू भी किस्में वड्डा रोग जिसन कुष्ठ कहने कोड़ दा मन का कोड़ हमें है, हमें की है ये दो सिन हों और मैं देहंगता दे मनता अपने आप नू आत्मा की बजाय देह मनदा होया तो उहदे विच ही ममता है, इसनों हमें कहते हैं। हालांकि ये देह जिसम नहीं है, जिसम के अंदर ये वो चीज़ है, सब अपना आपा वो है जिन्हों क्या कहो कबीरे राम की अंश जस कागज पर मिटे न मंश, ये परमात्मा की अंश। असी जितने हाँ आत्म शहजादे हाँ, साडा स्वरूप देह नहीं है, देह दे कुछ देर वास्ते आए हुए क्यों कह लो, देह कुछ देर वास्ते मिली हुई है, देह फिर खुस जाएगी, देह दे विच आके चौरासी का चक्कर अपने आप नू पछाण के अपने केंद्र नू मिलके एक कटना है। हाँ इन इसनू हमने कहते हैं देहंगता दे ममता बजाय ब्रह्मंगता ब्रह्म ममता देहंगता दे ममता इसनू चिंबड़ गई। ये किवें चिंबड़ गई, किवें लग गई, ये अज्ञान मस्करे लगा दी। एक दृष्टांत मिसाल, एक किसी पिंड एक जुलाहार और लोग भी रहते हैं, उत्थे एक मेला आ गया, सब लोग मेले जान लगे, वो जुलाह भी जान लगा, वो कदे अगे मेले नहीं सी गया। अपने घरवाली नूं कहिंदा सुने मेलों में कठ बहुता हुंदा, किते मैं गुआच ना जावां, कोई इहो जिहा जतन कर दे। वो कहण लगी अच्छा मैं तैनूं एक जतन बना दिनी आ, उन्हें गल नूं रस्सी बन्ह दित्ती, जे तैनू पता लगे मैं गुआच गया गल नू हथ मार के देखनी, जे तां रस्सी तां तू गुआचिया नहीं, जे ना होई तू गुआच गया फिर ढूंढण की कोशिश करनी। सो इसी तरह कीता, गल नू रस्सी बनी, सारा दिन जिथे होर फिरदे मेले विच ओह भी फिरदा रहा, रात दे वेले लोग मस्जिद विच जाके सुते ओह भी सौ गया। एक मसखरा उन्हें पूछिया भी आ गल नू रस्सी बनी है, ये जवाब कहण लगा मैं कदे मेले नहीं आया, पहला दिन है मेले आया, सुनिया सी मेलियां च कट्ठा थोड़ा हुंदा है, बहुते कट्ठा च आदमी रुल भी जांदा है। मैं अपने घरवाली नूं कहा सी जे मैं रुल गया की यतन करूँ, उन्हें मैनूं इह यतन कर दिता, मेरे गल नूं रस्सी बन दित्ती, कहा जे तैनूं पता लगे मैं रुल गया गुआच गया तां गल नूं हथ मार के देख ली, जे तां रस्सी होई तां तूं गुआचा नहीं, ना होई तां तूं गुआच गया, फिर ढूंढण दी अपने आप नूं कोशिश करनी नूं दस्सो। सो मस्करियां नूं कोई गल मसां लगदी है, उसने सोचा भी इहदे नाल अज मस्करी करी, जो सौ गया घुराड़े मारन लग पिया, मस्तर इन्होंने गल न रस्सी खोल के होर आदमी ने गल नी सुते पे, पै रात लंघ जो सुता पिया उठिया पहला उसने अपने गल नू हथ मारे, देखा मैं गुआचता नहीं गया पर रस्सी नहीं गल, समझ गया मैं गुआच गया। सो इधर उधर निगाह मारी ढूंढा कितने, जिस आदमी ने गल न रस्सी बनी सी उन्होंने जाके फड़ लेंद, कह लगा मैं तो तू हाँ। सारे लोग बड़े हैरान हो गल की, यानी उस उन्होंने बड़ा यह जहा खेल हो। इसी तरह जिन्हें उस मस्थरे ने वो गल रस्सी खोल के दूजे के गल बनती सी मन लगे सी मैं तू, इसी तरह ये ज्ञान रूपी मस्थरे ने इस जीवात्मा की हमने जी सी ब्रह्मता ब्रह्मता और ब्रह्ममता इनू हटा के देह दे लगा दी, देहंगता देह ममता ला दी, जिस करके इस हमने का बनया होया ही ये बेअंत तकलीफा का शिकार हो रहा है। गुरु जी ऐसा राग विच इसके कौड़े फल यूं दसते हैं।
जनता से मरता है हम मैंदा बया
बाबतियों गुरु जी फरमाने हाँ विच आया हाँ विच गया हाँ विच जमया हाँ विच मुड़ा हाँ विच दिता हाँ विच लिया हाँ विच खटिया हाँ विच गया हाँ विच सचियार कूड़ियार हाँ विच पाप पुन विचार हाँ विच नरक सुरग अवतार हाँ विच हसै हाँ विच रोग हाँ विच भरिए हाँ विच तोड़ हाँ विच जाति जिनसी खोड़ हाँ विच मूर्ख हाँ विच सियाणा मूर्ख मूर्ख की सार न जाना हम विच माया हम विच छाया हम मैं करकर जंत हो पाया हम मैं बुझ है ता दर सुझ जो हम मैनू पछाण लाया है ता आपे भी सोझी पैंदी है हम मैं बुझ है ता दर सुझ ज्ञान भी होना कत कत लूझे नानक हुकमी लिखिया लेख जेहा वेख है तेहा वे हम मैं एहा जात है हम मैं कर्म कमाए हम यही बंधना फिर जो नहीं पाए हम कितों उपजा किस सनी में जाए हम यो हुक्म पया किरत फिराए हमें दीर्घ रोग है वड़ा रोग को दारू भी सुनाने कृपा करे जे आपनी तो गुरु का शब्द कहे नानक सुनो जनक संजम दुख जाए गुरु जी ने वैद नूं दसिया सबसे पहला रोग हमें मन का कोड़ है अगरे हट जे सारे रोग नाल दी नाल खत्म हो जाएंगे सब का आदि कारण है इसका इलाज इसका उपाय इसका दारू की है इसका दारू गुरु शब्द गुरु मंत्र नाम अभ्यास है क्यों दसदे हैं Thank you.
मैदा इलाज
गुरु जी ने भावे सर्व रोग को औषध नाम दसिया है। सारिया बीमारियों का एको इलाज दसिया है। इतने दस दिन वाहगुरु गुरमंत्र है जप होमै कोई होमै इम्यूनिटी का उपा गुरमंत्र गुरु शब्द नाम का अभ्यास है। वाहगुरु का अभ्यास यूपी नाल कीता जाए हम त्यागना है। नाम दे एक रस बीटी लगाने का अभ्यास बनाया जाए। खाना मिठा मनिया जाए। यह तीन उपा दस होमै की निवृत्ति दसी है। यह जिस वक्त दसिया तो वैद की समझ आ गया। गुरु जी ने फिर फरमाया वैद जी तेरे मन में होर भी बहुत सारे रोग हैं जिमें जिसमानी रोगों का कोई हिसाब नहीं कितने होंगे हैं। इसी तरह मन के रोगों का भी कोई अंत नहीं। तेरे मन में टीवी की बीमारी भी लगी हुई है। तेरे मन में तपदिक की बीमारी भी है। वो की है दूसरे दे गुण ईश्वर ज विडियाइया आप दे के ना जर सकना उस दे नाल ईर्खा या हसत सड़ेमा करन लग पैना। इसनू मन की टीवी दसिया है। सो इसका इलाज नाम सिमरन तो सारिया बीमारियों का एक ही इलाज गुरु जी ने दसिया पर अनुपान बदलते चले जाते हैं। वो कि एकता की पुड़ी खाणी दे नाल नाम सिमरन का अभ्यास करना स्वयं मन की टीवी मन का रोग दूर होंगे। मन का यह तपदिक का यानी रोग हटता है। इसी तरह अवसाद सिंह किसी के गुण ईश्वर विडाइया आ दे के जर ना सकन ईर्खा हसदिया सड़ेवा कर लग पैना उसदिया बुराइया सोचन लग पैनियाँ। यह मन की टीवी दसे सदना ये अंदर परमेश्वर दे भजन का बीज पिया उसी समा पा के उगया उसने हौली हौली उग के उसनों सोहना बनियान का फल लगे मुक्त अवस्था प्राप्त हुई इलाहाबाद में रहा तो उत्थे हाकम एक किला बनाने लगा कंध टह जाती है फिर चिण दिन फिर टह जाती है। तो ज्योतिषी ने बुला के पूछा कि कोई उपाय दसो। सो ज्योतिषी मिलके जड़े सदने दे विरोधी सन बतला पार्टी उन्होंने बहुत सारा धन वगैरह दे के कहा भी तू ये कह दवी ये कंध सिरे तद चढ़ेगी किला सिरे तद चढ़ेगा इस दे विच एक आदमी नू चिणिया जावे नाम दा होवे सदना शकल सूरत होवे यही जी भक्ति भी करदा होवे कोई दुनिया विच सत्कार इज्जत भी इहो जे गुण जी पाए जान उन्हू चिण दो किला सिरे चढ़ जाएगा। खैर लोभ बुरी बला है। ज्योतिषी लोभ विच आके इन गलाई उस हाकम कह दाल यह भी कह दिता इतने थोड़े शहर के फलाने महल्ले इस नाम का यह जे गुणा वाला पुरश रहा है। हुक्म कर दिता शख्सी हुक्म उसी पूछना कि ने सी गिरफ्तार कर हथा थोड़िया पैरों बेड़िया मार दतिया सारे शहर के सुना दिता गया कल किला सिरे चढ़ने वास्ते एक आदमी की बली देनी ए चिणिया जाना है। तो लोग इकट्ठे हो गए लखन की तादाद के अज कंध में खड़ा के उन्हों इटा लाइनिया शुरू कर दतिया राज लोगों ने हैरान हो गया सदना भी इस चर्ज बात है बिला बजे बिना ही किसी मतलब से कोई गलती नहीं कोई गुनाह नहीं कोई कसूर नहीं किया इन्हों का बड़ी आश्चर्य बात है। असं होर कोई उपा ना देख के सदने ने अपने प्रभु के अगे प्रार्थना करनी शुरू कर दी है। अंतरयामी हे पतत पावन हे करण कारण हे मेहरबान हे सर्वशक्तिमान मैं सारी जिंदगी तेरी भगती विच लगाई मैं इस करके हुण भगती करदे करदे जे भगती करन वालियां नूं इह कुछ इह जे फल मिलण लगे ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਦਨਾ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਾਮ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਲ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ
निरप कन्या के कारणिक देव एक सारी कामार्थी स्वार्थी वाकी पैश सवारी। जिक्रम एक कोई राजा उस एक कन्या ने जन्म लिया। बचपन तो बड़े चंगे ख्यालात और भक्ति वाले, वो ख्यालात परमेश्वर दी प्रेमा भक्ति दे वध ही चले गए। उसने एक कहा अपने माता पिता ने, मैं सारी जिंदगी प्रभु भक्ति विच गुजारनी है, मैं दुनिया के फल जगण विच नहीं पैना, भला जे मेरी शादी करनी है सवाए चतुर्भुज विष्णु भगवान तो बिना मैं होर किसी नाल शादी नहीं करूँगी। तो उसका एक महल दरिया के किनारे तैयार करवा दिता गया, उसके विच चतुर्भुज की मूर्ति रख के उसका ध्यान भजन कर दी है, इकट्ठे बैठ ध्यान भजन विच मगन रहिंदी है। ये सारे खबर उठ गई और शहर होर सारे इलाके। तो उस शहर के एक सुनहरे का लड़का एक तरखाना का लड़का आपस में दोवें मित्र से सलाह की। तरखाना का लड़का कह लगा, बई तू क्यों राजा का दामाद बन जाता? कहना किवें? राजा की लड़की ने प्रण किया मैं विष्णु भगवान चतुर्भुज नाल शादी करवानी होर किसी नाल नहीं। दरिया के किनारे महल में वो पत्ती करती रहती है, तो तू कर एक मुकुट तू बना, तू सुनियार है चंगा मुकुट तैयार कर ले, जाए भगवान की फोटो देखिए वो दे। मैं तेरे वास्ते दो बाहां तैयार कर देना, चार तुझियां नहीं चार बाहां हो जाएंगे, दो दी हो जाए चतुर्भुज बन जाएंगे। गरड़ की सवारी करता है विष्णु भगवान, मैं एक गरड़ बना देना कला वाला और जो कम लगा देना, तो उस पर बह के रात में जा महल के उपर जाके कह लड़की मैं चतुर्भुज आ गया हूँ। तो खैर दोनों ने हजा मता पका के हजा कुछ किया। अज तो लड़की ध्यान में बैठी है, गरड़ जरा बनाया कला उसने रूब रूब गरड़ के खुम वगैरह लगा के वो उपर सवार होके उस महल पर जाते। लड़की को कह लगा, मैं आ गया हाँ तेरी भक्ति से प्रसन्न होके, तो तेरा प्रण सी भगवान विष्णु नाल शादी करवानी, अपने पिता को कह दे जथा जो जिन्हें मर्यादा वे शादी हो जाए तो चंगी। फिर पता दिता जिमें जिमें करनी बनती थी शादी कर दिती, उसी महल में रहना शुरू कर दिता। चतुर्भुज भगवान ने हूँ कह लगे, हूँ चार महान ही हूँ, दो महान ही रहेंगे दुनिया में, वो तो लकड़ी बनाई सी। फिर इस तरीके से उसने रहना शुरू कर दिता। राजा ने जान के मेरा दामाद है चतुर्भुज भगवान, मैनू फौजा रखने की लोड़ है, सर्वशक्तिमान है, सारिया फौजा हटा दी, इन्हें फर्क मैं क्यों कर। सो इस गल का पता कुछ देर तो बाद किसी होर राजा ने जो उस तो बली सी तकड़ा सी लग आपा तापी दे समय से चढ़ाई कर दी। बाहर आके अपना जासूस भेजे या वकील भेजे या मेरे न लड़ाई कर, नहीं मेरी ईन मन उसने सोचे फौजा तो मैं हटा दी हुई हैं, अपने जमाई भगवान के आसरे से आप ही जो कुछ करेगा, मेरे हाथ दे देता भी तो ही जो कुछ करे, फौजा बैठी हैं हूँ भगवान आप कृपा करो। उसने सोचा सुनहरे के लड़के ने भी हूँ पाज कर दू की कीता जाए, उसने सोचा तुम बेहतर है मर्जी ही चंगा। तो एन किनारे ते दरिया दे वो महल सी, कंध के उपर चढ़ के बह गया भी हूँ छाल मार के मर जाने देखी जी पिछे। भगवान ने सोचा तो हूँ मेरे नानू वटा लगता है चाटी, भगवान ने उसकी बांह फड़ी कह लगा अगे जाके लड़ घोड़े के सवार होकर मैं तेरी मदद करांगा। ऐसा ही किया भगवान ने, रैदी मदद की, दूसरे राजा ने शिकस्त दी। उस गल का इतने जिक्र करते हैं सदना जी कहे, प्रभु आप तो प्रेत ताइए भी लज्जा रखते हो, मैं तो सच्चे इरादे तेरी भक्ति करता चला है, जीव घात करता सी, बकरियां दे गल वढ़दा सी, मांस बेचता सी, सारे निषिद्ध निंदनी करन छड्डे, पूरे इरादे सच्चे इरादे तेरी शरण आया हाँ, हूँ मेरी लज्जा वो मंगू रख, वह तो देखतारी सी, मैं तो सच्चाई ना तेरी भक्ति करता हाँ, मेरी लज्जा तो तेन रखनी ही बनती है, यूँ प्रार्थना करता। निरप कन्या के कारण एक प्यो देखतारी कामार्थी स्वार्थी वाकी पैश्वारी, जो इन्नी गल कही मेरी लज्जा रख। उस मौके आकाशवाणी हुई सदने, क्यों घबरा ਐਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਵੱਡੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੰਧ ਵੀ ਚਿੜੇ ਡੈ ਗਏ ਤੂੰ ਵੀ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੀਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਘਬਰਾਉਣਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭੋਗ ਤੈਂ ਬਥੇਰੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਵੱਡੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅੱਗੇ ਸਦਨਾ ਇੰਪਰੂਵ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ
ਨਾਮ ਜਪੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਆਉਣਾ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤਉ ਗੁਣ ਕਾਹੇ ਜਗਤ ਗੁਰਾ ਜੋ ਕਰਮ ਨਾ ਨਾਸੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਦ ਗਾਏ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਕਰਮ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਨ ਕਤ ਜਾਈਏ ਜੋ ਜੰਬਕ ਗਰਾਸੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਜੇ ਗਿੱਦੜ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਡਿੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਕਰਮ ਰੂਪੀ ਗਿੱਦੜ ਫਿਰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਰਮ ਇਉਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਘਬਰਾਣਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਜਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਚਾਤਰਕ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ ਪ੍ਰਾਣ ਗਏ ਸਾਗਰ ਮਿਲੇ ਫੁਨ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਟਾਂ ਚਿਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਦੋ ਇੱਟਾਂ ਹੋਰ ਚਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਾਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਤੋ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਜਲ ਕਾਰਨ ਪਪੀਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਦੋ ਇੱਟਾਂ ਹੋਰ ਚੀਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣ ਮੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਜਲ ਕਾਰਨੀ ਚਾਤਰਕ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਣ ਗਏ ਸਾਗਰ ਮਿਲੇ ਫੁਨ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਪ੍ਰਾਣ ਜੋ ਥਾਕੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੈਸੇ ਬਿਰਮਾਵੋ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਨੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕੋ ਕਾਹੇ ਚੜਾਵੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਨੌਕਾ, ਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਾ ਉਸਦੇ ਕਿਸ ਕੰਮ? ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਫਿਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਊ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ? ਦੋਸ਼ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਸਦਨੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸਦਨੇ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਫਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ,
ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ
ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਹ ਨਾ ਮੋਰਾ, ਅਸਰ ਲੱਜਾ ਰਾਤ ਲਹਿਓ ਸਦਨਾ ਜੰਤੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਨ ਉਹ ਤੇਰੀ ਹੈ ਪੰਜੇ ਤੱਤ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਅਤਿਅੰਤ ਜਬਲਕ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰੈ, ਤਬਲਾ ਕਾਜ ਏਕ ਨਹੀਂ ਸਰੈ, ਜਦ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਿਟ ਜਾਏ ਤਬ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨਿਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੋ ਉਸ ਮੌਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੰਮ ਆ ਕੇ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਮੋਕਸ਼ ਰੂਪੀ ਕਾਜ ਵੀ ਸਵਾਰਦਾ ਦੂਜੇ ਵੀ। ਇਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਦਨੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਹਰ ਜੀਵ ਰੱਖ ਹੈ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਭਗਤਾਂ ਲਈ ਜੁਗਾ ਜਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਚਲਾ ਆਇਆ,
ਆਇਆ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵੈਬੀ ਮਦਦ ਹੋਈ ਕੰਧ ਜੋ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਚਿਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਕਿੱਲਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸੀ ਹਾਕਮ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਭ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਸਦਨੇ ਦੀ ਲੱਜਿਆ ਸੋ ਉਹ ਸਦਨਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅੰਕੁਰ ਉੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਅਜੇ ਖਿਆਲਾਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬੀਜ ਨੇ ਉੱਗ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਬਣਾਇਆ ਤਤਵਿਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅੰਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਉਹ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਿਰਛ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਣਕਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੇ ਖਿਆਲਾਤ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸਦੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਬੇਵਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨੁ ਤਨ ਮਿਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਹੋਰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ
ਆਹ
ਸ਼ੁਕਰ 84 ਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮਨ ਜੋਨੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਮਨ ਉਹ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੈਸਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸਭ ਤਨ ਹੈ, ਤਨ ਹੈ, ਤਨ ਹੈ
Thank you. निवारण हारा दुख हंता सुख रास ताको विघ्न न को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास इको ओंकार श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक ले थे फिर अंगद गुरते अमरदास रामदासे हुई सहाय अर्जन हर गोविंद नू सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए गुरु तेग बहादुर सिमरिए खर नौ निद आवे ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहेब जी सब थाई होए सहाय श्लोक महला दूजा आपे जाने करे आप आपे आने रास तिसे अगे नानका खले कीचे अरदास सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान तरके खालसा साहेब बोलो जीवा दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान तरके खालसा साहेब बोलो जीवा चार साहेब जादे पंज प्यारे चाली मुक्ते चौहान तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान तरके खालसा साहेब बोलो जीवा जिन्ना गुरमुखां नाम जपया वंड छकिया धर्म हे शीश दिते चरखियां ते चढ़े बंद बंद कुटवाए सिदक नहीं हारिया तिन्ना सचियारियां प्यारियां सिदक वां सिखां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा साहेब बोलो जीवा सिखां दा मन नीवा मत ऊची मत पत का राखा आप अकाल पुरख वाहिगुरु सिखां नू सिखी दान नाम दान प्रोसा दान दाना सिरदान श्री अमृतसर साहेब जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार सच्चे पातशाह सिखी सिदक केसां सवासां संग निभाउणा हे करणान धान सतगुरु जीओ आप जी दे हजूर रात्रि दे दीवान सजाए हन कीर्तन बखियान होए हन अखर वादा काटा पुल चुक माफ करना अगे वास्ते सुध स्पष्ट कीर्तन बखियान करंदा वल बख्शो हे मेहरवान गुरवाणी द्वारा विचारा कीतियां हन इन्हां दा प्रभाव साढ़े कलयुगी जीवां दे हिरदियां ते वसाओ आई संग दी हाजरी आप जी दे दरते प्रवान करो नाम दान सिखी दान परोसा बख्शो आप जी दे हजूर करा प्रसादी देग हाजिर है आप जी भोग लाओ सीत प्रसाद सा संगत को मिले काम क्रोध लो मोह अहंकार आदिक तो बचा के आप जी दे पवित्र चरण कवलां दी प्रीत बख्शो सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया आप जी दा नाम अठे पहर चित आवे कला वाहगुरु जी की वरते गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की मोले सोने
सदा